मसीह में बुलाए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, हम पहुंच गए हैं हमारी क्लास नंबर 6, जिसका नाम है विश्वास। तो आज हम करेंगे विश्वास की बात। आज हम पढ़ेंगे विश्वास के बारे में। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसका तजुर्बा हम हर रोज करते हैं, करते हैं ना? क्या, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को विश्वास है कल सूर्य निकलेगा और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। किसी को विश्वास होता है कि मुझे काम करने के बाद तो पैसा मिलेगा, मेरी तनख्वाह मिलेगी। विश्वास होता है ना, आपको विश्वास है कि मेरी अगले महीने इस तारीख को मेरी पेंशन आ जाएगी, है ना? किसी को विश्वास है कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा तो सेफ है ना, उस पे तो चोरी नहीं हो सकती। तो ऐसे विभिन्न तरह के विश्वास तो हम रोज तजुर्बा करते हैं। हमें कई बार हम बोलते हैं कल को मैं कपड़े धोऊंगी, हमें विश्वास है कि मैं जीवित रहूंगी और कपड़े धोऊंगी, है ना? तो ये सब विश्वास पे चलता है ना। इसी तरीके से धार्मिक विश्वास अलग अलग है। धार्मिक विश्वास जो है अलग अलग है। हिंदू लोगों का क्या विश्वास है? बहुत से रीति रिवाज है, है ना? क्या हिंदू लोगों का भी कि जो गाय का मूत्र है वो तो पवित्र होता है ना, मानते हैं ना? ये उनका विश्वास है, हम कुछ नहीं बोलते। दूसरा विश्वास मुस्लिम लोगों का क्या विश्वास है आपको पता है? वो एक अतर को पानी में मिला के नहाते हैं, बोलते हैं दुष्ट आत्माएं दूर रहती हैं, ठीक है? ये उनका विश्वास है। तीसरे तरह का बुद्ध वाला का विश्वास है। बुद्ध वाला निर्वाणा आत्मा का जो निर्वाणा होता है ना, कि जन्म का सिलसिला चलता रहता है, ये उनका विश्वास है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे मनुष्य की आत्मा एक जन्म से दूसरे, कभी कऊ पक्षी में, कभी किसी में, किसी में, किसी में घूमती रहती है, ये उनका विश्वास है। रोमन कैथोलिक का विश्वास क्या है कि ये जो सर्दना, और ऐसे साउथ इंडिया में भी कुछ रोमन कैथोलिक चर्च है, और अपने भी इधर ट्रिनिटी चर्च है, तो बोलते यहाँ से अगर हम रोजरी या पवित्र पानी या तेल या कुछ लेके आएंगे तो वो हमें विभिन्न प्रकार की मुश्किलों से बचाएंगे और दुष्ट आत्माओं से बचाएंगे। और उनका विश्वास है कि हम संतों को प्रार्थना करें जैसे मरियम को करते हैं, या और संत जो उनके हैं जैसे संत पी जो भी ऐसे बहुत से हैं जिनके नाम पे उन्होंने चर्च खोले, प्रार्थना करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, ये उनका विश्वास है। एक्चुअली वो संत पॉलिस ही है, हाँ। तो ये उनका विश्वास है। पेंटिकॉस्ट वालों की बात करें तो ज़्यादा उनको अच्छा लगता है अन्य भाषा में बात करना, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अन्य भाषा को और पवित्र आत्मा को बहुत महिमा देते हैं, तो ये उनका विश्वास है। तो ये विश्वास की कुछ उदाहरण है। लेकिन जब हम वचन में देखें तो विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास, हम बोलते ना हम विश्वास करते हैं, विश्वास का मतलब क्या है बता सकते हैं आप? कि विश्वास को हम कैसे बयान कैसे कर सकते हैं, क्या होता है विश्वास?
हम उसको मानते हैं, महसूस करते हैं ना कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया, हम पापी थे, परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी, हमारे पापों की छुड़ौती के लिए ये सब कुछ किया, ये विश्वास ही है।
ओके,
कि महसूस करते हैं देख और आत्मा से मानते हैं चीज को।
लेकिन हमने देखा
हमारे पवित्र शास्त्र
बोलता है। तो पवित्र शास्त्र बोलने की बात भी नहीं है। इब्रानिया 11:1 में पढ़ो विश्वास क्या होता है।
अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है,
सबूत। जो चीज की आप आस करते हो और जो चीज आपने देखी नहीं, उसका क्या है? सबूत। विश्वास है वो। विश्वास क्या है? सबूत। किस चीज का, जिस चीज को आपने देखा नहीं, और वो आप करते हैं कि वो चीज है या होगी। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर देखा हमें, लेकिन हमें पक्का सबूत है वो है। ये होता है विश्वास। विश्वास की परिभाषा समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये विश्वास भी तीन तरह का है। एक तो बचाने वाला विश्वास, एक हर रोज का विश्वास। जैसे बचाने वाला क्या है, परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बचाने के लिए, तो ये बचाने वाला विश्वास हम मानते हैं। उसके बाद एक विश्वास है हर रोज का विश्वास। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे हर रोज की रोटी हमें दी, हमें विश्वास है। इसे ये हर रोज का विश्वास। ऐसे बहुत से हर रोज के विश्वास है, आज मैं काम पे जाऊंगा तो मुझे ये होगा, वो मिलेगा, ऐसा हर रोज हम करते हैं। तीसरे तरह का विश्वास है शिक्षा पे आधारित विश्वास। तो ये जो विश्वास है अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। ईसाइयों में भी ये अलग अलग है, अलग अलग मिशन का अलग अलग विश्वास है। जैसे मैं हमने देखा ना, रोमन कैथोलिक वाले कुछ और, पेंटिकॉस्टल कुछ और, सेवन डेज वाले बोलते हैं तुम लोग संडे को वर्शिप करते हो, गलत करते हो, असल में सैटरडे को होती थी, सच में सैटरडे को ही होती थी। अच्छा। जी सैटरडे को ही होती थी। हाँ जी, क्योंकि जो विश्राम का दिन है वो सैटरडे था, संडे जो है वो पहला दिन है, फर्स्ट डे। ठीक है, संडे, सन डे शुरुआत का दिन, फर्स्ट डे। तो वो बात कुछ और है, मैं बताऊंगा कि कैसे सैटरडे से संडे ट्रांसफर हुआ, वो बहुत बड़ी बात है, आगे चलेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा पे आधारित विश्वास जो है अलग अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन ये तो विश्वास की बात हमने कर ली, अब हम एक ऐसे विश्वास की बात करेंगे जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है, गारंटी है। सुना होगा तो मैंने ही बताया होगा आपको, ये पढ़ लो बात। यहूदा 20, प्रकाशित वाक्य की पहली किताब, बस 20 ही, एक ही है चैप्टर उसका। हाँ आगे नहीं, यूहन्ना के बाद, इसके बाद नहीं 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 इसके बाद बाद सिस्टर बाद, इसके बाद तीसरा यूहन्ना आएगा, उसके बाद यहूदा आएगा। हाँ, इसकी 20,
पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए।
दो चीजें हैं, नोट कर लेना। पवित्र आत्मा में प्रार्थना क्या है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आज तो मैं बात करूंगा एक ऐसे विश्वास की जो ईसाइयों के लिए बड़ा नया होता है। कौन सा विश्वास? अति पवित्र विश्वास। तो ये अति पवित्र विश्वास क्या है और इसमें उन्नति करने का क्या मतलब है? ये उन्नति कैसे करनी है इस अति पवित्र विश्वास में? मैं अगर आपसे पूछूं, आपके पास अति पवित्र विश्वास है तो आपका उत्तर क्या होगा? नहीं, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं अति पवित्र विश्वास क्या होगा, तो आप कैसे पहचानोगे कि आपका विश्वास अति पवित्र विश्वास है या नहीं है? ठीक है, तो ये अति पवित्र विश्वास क्या है और इसमें उन्नति करने का मतलब क्या है, ये तो अभी हम धीरे धीरे देख लेंगे। लेकिन ये अति पवित्र विश्वास के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, तीसरे वचन में पढ़ो जरा।
हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों का एक ही बार सौंपा गया।
उस विश्वास के लिए यत्न करना है जो पवित्र लोगों को या संतों को, इंग्लिश में सेंट्स लिखा है, संतों को एक ही बार सौंपा गया था, बार बार नहीं सौंपा गया। मिशन ने अपना विश्वास बना लिया, प्रभु का विश्वास नहीं है। प्रभु ने एक ही बार सौंपा अपने संतों को, वो विश्वास कौन सा है? अति पवित्र विश्वास। और उस अति पवित्र विश्वास के लिए ही हमें क्या करना है? यतन। खाली विश्वास से संतुष्टि नहीं करनी है, अति पवित्र विश्वास। क्योंकि बीच में क्या बोलता है? अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर। इन दोनों में से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो क्या पूरा है? मान लो आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, अति पवित्र विश्वास में उन्नति नहीं है, तो तकड़ी कैसे होगी? ऐसे। लेकिन इसको कैसे रखना है? बराबर, बैलेंस। मतलब कि अति पवित्र विश्वास, अभी अति पवित्र विश्वास तो एक ही बार सौंपा गया, किनको? संतों को, पवित्र लोगों को। वो संत कौन थे? चेले। वो संत कौन थे? चेले। परमेश्वर के पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो विश्वास किसको सौंपा था? प्रेरितों को। वो विश्वास के लिए हमें क्या करना है? वही हासिल करना है। और परमेश्वर की कृपा से आपको वो धीरे धीरे मिल जाएगा अभी, ठीक है? तो इस विश्वास को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र थे, क्या लेके आए थे अपने साथ? नहीं, क्या लेके आए थे? कोई ऐसा मत बोलो कुछ नहीं लेकर। क्या लेके आए थे? वचन पढ़ो, यूहन्ना 1:17। प्रभु यीशु मसीह अपने साथ दो चीजें लेके आए,
इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंचे।
प्रभु यीशु मसीह अपने साथ क्या लेके आए? अनुग्रह और सच्चाई।
सच्चाई मीन्स वचन।
अनुग्रह क्या था? अनुग्रह ये था, इब्रानिया 1:2, परमेश्वर ने अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातें की, ये क्या? अनुग्रह। पढ़ लो
1:2।
इस अंतिम दिनों में हमने से कुछ के द्वारा बातें की।
ये था अनुग्रह। और सच्चाई क्या थी? यूहन्ना 3:34 पढ़ लो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला?
क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा
परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आत्मा नाप नाप के नहीं दी थी, बाकियों को नाप नाप के देता है परमेश्वर। आपको या आपको ज्यादा मिल सकती, मुझे कम मिल सकती है, या मुझे ज्यादा मिल सकती है, आपको कम मिल सकती है, प्रभु के लिए कोई माप नहीं था। तो जो जिसे परमेश्वर ने भेजा वो किसकी बातें करता था? किसकी बातें? परमेश्वर की। और परमेश्वर की बातें क्या है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन क्या है? तेरा वचन
सत्य है,
सच्चाई। तो प्रभु यीशु मसीह अपने साथ क्या लेके आए थे? सही बोला ना, अनुग्रह और सच्चाई। सच्चाई का मतलब परमेश्वर का वचन। अनुग्रह ये था कि अंतिम दिनों में परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा क्या की? बातें की। तो परमेश्वर का जो वचन, जो सत्य है, सिर्फ वो ही सत्य है, ठीक है? जो प्रभु यीशु मसीह ने किसको बोला थी? वो सत्य किसको बोला? प्रेरितों को सिखाया। तो उस जो वचन परमेश्वर ने बोला, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को दी, वो है अति पवित्र विश्वास। यानी जो बातें, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को सिखाई या दिया, अगर वो विश्वास हमारे पास है तो हमारा है अति पवित्र विश्वास। लेकिन वो सच्चाई या वो वचन जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो पुत्र ने प्रेरितों को नहीं सिखाया है, वो अति पवित्र विश्वास है। तो हमें वो विश्वास के लिए ट्राई करना है, यत्न करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को क्या दिया था? परमेश्वर का वचन, जो कि सत्य है। तो कहने साधारण भाषा में मैं बताता हूं, अति पवित्र विश्वास वो होता है जो परमेश्वर के वचन पे आधारित हो। वो विश्वास जो परमेश्वर के वचन पे आधारित नहीं है, वो विश्वास जो परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता है, वो तो अति पवित्र विश्वास
नहीं।
अति पवित्र विश्वास है जो परमेश्वर के वचन में से है, जो परमेश्वर के वचन पे आधारित है। लेकिन इस वचन विश्वास के लिए आज आप जलंधर ढूंढो तो कितने लोग यत्न कर रहे हैं? करता है यत्न कोई? कोई नहीं करता। किसी को इंटरेस्ट नहीं है बाइबल में, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। बस पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। अरे पवित्र आत्मा तो जान लो पहले क्या है। अभी कभी आपने सोचा, ये बोला है पवित्र आत्मा माप के देनी है। पवित्र आत्मा को कैसे मापा जा सकता है? सोचा? हमें पवित्र आत्मा नहीं पता है, प्रार्थना करने का तरीका नहीं पता है। प्रभु यीशु मसीह के पास कितने लोग आते थे चंगा होने? 10,000। बाइबल में कितने वाक्य हैं उसने सबको बोला जाके पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो जाके? कितनी बार बोला प्रभु यीशु मसीह ने? बोला एक भी बार नहीं।
उन्होंने चंगा किया तो बोला तू क्या चाहता
है? बस तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। बाद में ये भी नहीं बोला जाकर प्रार्थना में लगे रहना। बोला
ये बोलते थे किसी को बताना नहीं, बस जो मैंने सब कुछ किया वो किसी को ना बताना।
लेकिन यहाँ पे उल्टा है, मैंने जो किया है मैं प्रचार करूंगा, सीडी बना के बांटूंगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। देखो उल्टा है सब कुछ, उल्टा। ये दिखावा ना, दिखावा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। चलो मैं वो बात में तो पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ आज कितने लोग हैं जो बाइबल के सत्य को ढूंढ रहे हैं। नंबर एक प्रश्न, कितने लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास सत्य है? कितने लोग बोल सकते हैं? आपको ये विश्वास, आप ये विश्वास करते हैं कि बाइबल सत्य है? करते हैं ब्रदर? बिल्कुल करते हैं ना। तो आपको क्या लगता है जो बाइबल में है वो बिल्कुल सही है ना? दृढ़ विश्वास ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं बात करता हूँ जनरल आम तौर पे लोगों की। मैंने तजुर्बा किया, मैं जब आपने जैसा बोला, मैंने बोला सिस्टर वचन में दिखाइए, क्योंकि मैं तो जो वचन में बात नहीं है मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अगर चीज वचन में है तो मैं मानूंगा, अगर नहीं है तो नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, हमारे पास्टर जी ने ऐसा बोला है, हमारे पास्टर जी ने वैसा बोला है। मैं बोलता हूँ नहीं पास्टर जी, ठीक है आपने जो उन्होंने बोला वो ठीक है, लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? नहीं बाइबल के बारे में तो ब्रदर हमें नहीं पता है। अरे आपका कैसा विश्वास है फिर ब्रदर?
इंसान पर विश्वास कर
रहे हैं। यस, अति पवित्र विश्वास तो नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है। आप मैं मान लो आपको, मान लो बाइबल का ज्ञान नहीं है, आपको कोई भी कल को आके आपको मतलब चूहे को मारने का तरीका कैसा होता है? आप दवाई लेके आते हैं, उसकी गोली बना के रख देते हैं, चूहा खा लेगा? चूहा खाएगा? लालच देना पड़ता है। आपके पास कोई भी आए, शैतान का तरीका क्या होता है? मिलावट करके खिलाने का। मिलावट करके उसने बहुत से धर्म ग्रंथ बनाए। सब बोलते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहब वाले बोलते हैं, अरे हमारे वचन में, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसे लिखा है, उसमें भी बोलता है परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर तो प्रेम ही है, शैतान का तरीका ही है। थोड़ी सी सच्चाई, बहुत सा झूठ लिया, मिलावट की और चल दिखाओ। आपके पास कल को ऐसी मिलावट लेके कोई आए तो आप कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? तो अति पवित्र विश्वास होना बहुत जरूरी है ना, परख करने के लिए। योहन्ना बोलता है हर आत्मा पे विश्वास मत करो, बल्कि उनको क्या करो, अभी आत्मा को, आप मेरी आत्मा को परख के दिखाओ, मैं चैलेंज करता हूं आपको, परखो। तो योहन्ना के कहने का मतलब क्या था, आत्मा को आप कैसे परख सकते हो, हम तो देख नहीं सकते आत्मा, तो परख कैसे सकते हैं, है ना। तो आत्मा के भी तीन मतलब होते हैं बाइबल में, लेकिन नहीं पता है तो हम कुछ भी, अभी आज आज पता चल जाएगा। तो कई लोगों को तो पूरा बाइबल पे विश्वास ही नहीं है, कई लोगों को, मैक्सिमम लोगों को बोलता हूं। हम देखते हैं आज क्रिश्चियन किताबों का ही नहीं पता होता है कहाँ है, एजरा, एस्तर, तीतस, ऐसी किताबें बहुत रेयर सुनते हैं, क्योंकि सिखाई नहीं जाती है, सिखाई नहीं जाते हैं, बात ही नहीं की जाती है, है ना। सिर्फ चार सुसमाचार पढ़े और बपतिस्मा लिया, आपके पास्टर जी बोलते हैं प्रार्थना संडे सर्विस में आना है, बस आते जाते रहना है, ज्ञान में बढ़ो ना बढ़ो प्रार्थना जरूर करते रहना है, वचन ऐसा नहीं बोलता है। अगर तो मसीह के सच्चे सिपाही बनना है तो थ्योरी भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, और कष्ट भी चाहिए, हार्ड ट्रेनिंग चाहिए, सब चाहिए सिपाही बनने के लिए। आप तो अच्छी तरीके से जानते हो, आजकल तो क्या होता है, पुराना नियम तो स्किप ही कर दिया जाता है, सारा नया नियम पे, और ज्यादातर प्रचार तो पैसों पे होता है, दशवान।
तो बोलते छोड़ो पुराने नियम को, बोलते छोड़ो पुराने नियम को,
अगर
चेंज कर दिया,
चलो आप अगले बार ये प्रश्न सुनोगे ना, तो बोलते अगर पुराने नियम को छोड़ना है तो दशवास को क्यों नहीं छोड़ रहे,
उसमें
नए नियम में कहां पे अंधविश्वास के बारे में, और सुन लो, दशवास नए नियम में है ही नहीं। पढ़ लो रोमिया 6 का, रोमिया 6 का बाइबल दीजिए जरा एक मिनट, 6 का 25 और 26 ऐसा वचन है, रोमिया 6 का 6 का, क्योंकि हम जानते हैं मसीह, उसमें बोलता है हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम तो कृपा के अधीन है। ये लो पढ़ लो 15वां वचन पढ़ लो जी।
तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरना अनुग्रह के अधीन है।
हाँ, तो हम तो व्यवस्था के अधीन नहीं है, व्यवस्था का मतलब समझते हैं आप, लॉ। लॉ क्या था, जो मूसा को दिया गया था, तो मूसा का हम पे लागू ही नहीं होता है। हमारे मेरे पास बहुत ही कंप्लेंट्स आती हैं, जिधर मैं स्टडी जाता हूँ ना, बोलते हैं हमारे हर बार दशवांश पे ही लगा के देते हैं, दशवांश पे ही लगा के देते हैं। अभी जब मैं बोलता हूँ दशवांश नहीं है तो मुझे बुरा बोला जाता है, मैं तो सत्य बोलूंगा चाहे कोई मुझे बुरा बोले चाहे नहीं, दशवांश है ही नहीं तो मैं कैसे बोल दूँ। नए नियम में है ऑफरिंग, जितनी आपको कर सकते हो उसमें कोई परसेंटेज नहीं है, और परमेश्वर को दशवांश नहीं चाहिए, परमेश्वर को 100% चाहिए, 100%। तो चलो वो बात अलग है, वो छोड़िए। तो मैं बोल रहा हूँ कि पुराने नियम को तो बोला जाता है इसको छोड़ो, नए नियम पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अति पवित्र विश्वास वो है जो बाइबल पे आधारित है, पुराने नियम और नए नियम में उसका कुछ अंश है, वो है अति पवित्र विश्वास। क्योंकि परमेश्वर, हम तो ये बात मानते हैं कि ये जो बाइबल है तो इंसान ने नहीं लिखी है, ये किसने लिखी है, परमेश्वर ने। सिर्फ इंसान को तो क्या किया है, इस्तेमाल किया है। इसके दो हिस्से हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में 39 किताब, नए नियम में 27 किताब, टोटल 66 किताब। तो परमेश्वर का वचन है किताबों की किताब, 66 किताबों की किताब, जो के सिर्फ सत्य है, जिसमें परमेश्वर ने क्या किया है, प्रकटीकरण। शुरुआत कैसे हुई, अंत क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो मनुष्य की सृष्टि के बारे में बात कर रही है। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो अंत के बारे में बात कर रही है। अंत ऐसा होगा, तीसरा संसार आएगा, धार्मिकता होगी, कोई है किताब। ये जो हिंदू लोगों ने यजुर्वेदा, सत्यवेदा, सॉरी सत्ययुग, कल युग, ये वो, ये सब बकवास है। बाइबल के अनुसार ये सब बकवास है। क्यों? क्योंकि हमने पहले संसार में देखा कोई युग नहीं था, 1656 साल का समय था, पानी में डूब के नष्ट हो गया। दूसरे संसार में तीन युग थे, बुजुर्गों का युग, यहूदियों का युग और सुसमाचार का युग। तीसरे संसार में सत्य युग आएगा जिसमें धार्मिकता वास करेगी, है ना। तो कई बोल लोग बोलते ना सत्ययुग में तो ऐसा नहीं था, कल युग है, अभी ऐसा है, सब बकवास है। ये विश्वास बाइबल पे आधारित विश्वास है।
लेकिन ये हमारे बाइबल के से इन्होंने नाम धारण किए हैं, जैसे सत्ययुग बोलते हैं
जी,
ये अपने बाइबल के ऊपर ही है
जी, जी, जी,
तो
जी।
इन्होंने इसको सत्ययुग बोला हुआ है कि उस टाइम पूरा वचन का, परमेश्वर का, पूरे शब्द का प्रचार होगा, तो उसी को
नहीं, नहीं नहीं वो सत्ययुग तो निकल गया बोलते हैं। अभी ये बोलते हैं कलयुग चल रहा है, सतयुग बहुत अच्छा था, उसमें ऐसा था, उसमें
निकल गया।
तो ये चीज ऐसे तोल मोल करनी है। तो प्रकाशित वाक्य से लेके, सॉरी उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरा प्रकटीकरण है। और आपको अगर पता हो, ईसाइयों को ये नहीं पता होता है कि पहली किताब कौन सी थी, अय्यूब, अय्यूब ने लिखी थी ना पहली किताब। लेकिन वो समझते हैं किसकी, ये जो उत्पत्ति, उत्पत्ति लिखने वाला कौन था, मूसा। मूसा अय्यूब के कितने साल बाद आया, बाद आया। तो ये सोचने वाली बातें हैं। अय्यूब ने भी सृष्टि के बारे में, अय्यूब बताता है, पता क्या बता रहा है, आपने तो सुना होगा परमेश्वर ने मिट्टी ली है ना और गुड्डी बनाई एक, उसमें किया और वो आदम बन गया। लेकिन अय्यूब में पता चलता है कैसे बनाया। ऐसा नहीं है, ये जो हमारे अंदर ये कैल्शियम होती है ना, चिकन चिकन खाते हैं ना, उसके अंदर ब्राउन ब्राउन बहुत अच्छा लगता है, उसे कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम बोलता परमेश्वर में दूध की तरह डाला और दही की तरह जमाया, ऐसे ऐसे हड्डियां बनाई, ऐसे नहीं जो हम, इसलिए हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ साधारण नहीं मान लेना है कि परमेश्वर ने मिट्टी ली और उसका गुड्डा बनाया, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हम जब पढ़ेंगे मैं दिखाऊंगा आपको, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर अपने वचन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, बोलते ना तो इसमें कुछ बढ़ाना और ना ही, ये तो प्रकाशित वाक्य का अंतिम वचन 22:17-19 पढ़ा है आपने, पढ़ लो, पढ़ लो 22:18-19।
मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ भी बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन वृक्ष के और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा।
बहुत स्ट्रिक्ट है परमेश्वर, ना तो कम ना तो ज्यादा। लेकिन आजकल के जो टीचर लोग हैं वो तो इस चेतावनी को बस चेतावनी ही समझ रहे हैं, है ना। जब यही बात बल समझ लो, कई लोगों ने, रोमन कैथोलिक वालों ने किताबें भी ऐड कर दी, और 72 किताबें हैं उनकी।
अच्छा, बाइबल में, बाइबल तो ये बोलती है अपनी पूरी 66 बुक्स
है,
39 और 27। तो ये कैसे अपनी मर्जी से, वही है ना, तो ये
सर वही
लागू होता है।
वो कुरंतिया में लिखा है ना, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धियों को अंधा किया हुआ है। यीशु मसीह उनकी बाइबल में भी है ये बात, साफ साफ बोल रहे हैं धरती पे किसी को फादर मत कहना,
किसको,
किसी को भी,
इनकी बुक में।
हाँ
तो लेकिन वो तो खुद फादर बुलवाते हैं।
यस
वो खुद फादर बुलवाते हैं और कई फादरों को देखो हम टेंथ चार साल उसमें इसकी में अगर उनके पैर नहीं छूना कुछ नहीं करना बहुत बुरा मान जाते हैं, तो फील करते हैं कि हमारे फादर नहीं बोला या उन्होंने हमारे पैर नहीं छुए, सबकी परमिशन है क्या बोला है, मेरे अलावा कोई भी पवित्र नहीं और सिर्फ मेरे आगे तो झुकना, पैर झुकने का ना सम्मान देना, अपने सर को सजदा करते हैं ना झुकाते हैं
प्रभु। आप हमें जो सीखना है प्रभु से सीखना, किसी इंसान से नहीं। प्रभु के पास आके एक बोलता है प्रभु आप तो बहुत अच्छे हो, प्रभु यीशु मसीह को बोला ऐसा, तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया, पिता के सिवाय। तो एक और वचन पढ़ लो, व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण 12 का 32 में पढ़ लो। हाँ जी 12:32 जी
जितनी बातें कि मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें कुछ घटाना।
नीति वचन 30:6 जी
उसके वचनों में कुछ मत पड़ा, उसके वचनों में कुछ मत पड़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा रहे।
अगर उसके वचनों में बढ़ाते हैं तो मैं क्या ठहरूंगा, झूठा। और झूठ किसका पिता है, झूठ का पिता कौन है, शैतान। ठीक है, इसीलिए प्रेरित पौलुस था ना, जो चेला पौलुस बड़ा चौकन्ना था, कभी 30:6 ठीक है। तो प्रेरित पौलुस का एक तरीका था वचन बोलने का, कभी डरता नहीं था, बोलता है इंग्लिश में बोलता है नॉट शंड टू डिक्लेयर, शंड मतलब घबराहट से नहीं परमेश्वर का वचन बोलता मैं। पढ़ लो प्रेरितों के काम 20:27
क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका,
झिझकता नहीं था। तो इसी तरीके से हमें भी, हमें इंसान को खुश नहीं करना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। परमेश्वर की जो बात, परमेश्वर के वचन का सत्य जो सच्चाई है बता देनी है। लेकिन देखो परमेश्वर कितना सावधान है अपने वचन के प्रति के, उसमें कुछ नहीं करना है, कम ना बढ़ाना है। तो अब प्रश्न ये होता है, आपके हाथ में जो बाइबल है इसमें कुछ कम किया गया है, कुछ बढ़ाया गया है, आपको पता है
बाइबल में?
आपके हाथ में जो बाइबल है क्या उसमें कुछ कम किया गया है या बढ़ाया गया है, आपको पता है? नहीं पता है आपको, नहीं पता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी मैं हिस्ट्री में लेके जाऊंगा, क्या हुआ बाइबल के जो सबसे अच्छे अनुवाद हैं दो माने गए हैं, एक तो NIV एक तो KJV। एक्चुअली क्या होता था, जब शुरुआत में बाइबल लिखी गई तो उस वक्त ये पेन, ये पेंसिल, प्रिंटिंग ये होती थी, कैसे होते थे उसके ना, वो तो बाद की बात है, उससे पहले पता कैसा था, चमड़ी पे लिखी जाती थी, स्याही के साथ चमड़ी पे लिखी जाती थी। तो क्या होता था 50-60 साल बाद वो फेड हो जाती थी, फिर से लिखना पड़ता था, फिर से लिखना पड़ता था, फिर से लिखना पड़ता था। ऐसे बाइबल बहुत बार लिखी गई,
उसमें कुछ घटता बढ़ता गया।
तो 1400 साल तक ऐसा होता गया, देखो कितनी लेबर और कितना कष्ट का काम था। लेकिन ये जो केजेवी है ना, केजेवी सबसे पुराना प्रिंटेड वर्जन है, 1611 में प्रिंट हुआ। एक्चुअली जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी वो आई थी 1400 के बाद, जो इसमें टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो केजेवी 16वीं सदी की ट्रांसलेशन है, ठीक है। और 1940 में एक जगह है, उसे बोलते डेड सी,
डेड सी
मरा हुआ समंदर। वो क्या है, वहाँ पे एक जगह है कुमरान खान, कुमरान केव, खान होती ना खान, जैसे नमक की खान और लोहे की खान, कोयले की खान, हाँ। तो ये डेड सी क्या होता था, डेड सी में बहुत सारा नमक होता था, नमक समंदर का सारा नमक उधर जाके गिरता है, और डेड सी एक ऐसी जगह है जो भर्ती नहीं होगी। तो क्या हुआ 1940 में, और जब भी ये मनुस्क्रिप्ट लिखी जाती थी ऊपर डेट डाली जाती थी कि इस डेट को ये लिखी गई। तो 1940 में जो कुमरान खान थी मरे हुए समंदर के नज़दीक, जहाँ बहुत सारा नमक होता है, वहाँ पे दूसरी तीसरी सदी की मनुस्क्रिप्ट मिली। मनुस्क्रिप्ट क्या होती है, रोल्स, जैसे क्या बोलते हैं, उस वक्त हमने देखे ना पुराने ज़माने में क्या होता था, लेटर लिखा जाता था और रोल करके, हाँ ऐसे
कपड़े के रोल होते, हाँ
ऐसे ही रोल्स, उसे मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट में ऐसे होता था। तो 1940 में मिली जो मनुस्क्रिप्ट वो थी दूसरी तीसरी सदी की, उससे बना नया वर्जन, क्या था उसका नाम, NIV, न्यू इंटरनेशनल वर्जन। और उसमें देखा, उसमें दो बहुत बड़े बड़े वचन जो बाइबल में हैं लेकिन हटाए गए थे, वो साफ साफ लिखा है NIV बाइबल में। ये देखो ये लिखा है, इसमें लिखा होता है पुरानी मनुस्क्रिप्ट में और दूसरे अनुवाद में ये नहीं है। एक तो वचन है, आपकी बाइबल में होगा वो, लेकिन KJV वगैरह में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे दो, एक तो मरकुस 16:9-20, ठीक है, ये और यूहन्ना 7:53-8:11, ये बस वचन हटाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम क्या करें, बड़ी हैरानी की बात है हमारे लिए। हम तो सीधे साधे लोग, हिंदी पंजाबी पढ़ने वाले लोग, हम कब का कैसे पहुंच सकते हैं इधर तक। तो इसलिए इन दोनों को साथ में रखना बहुत जरूरी है, दोनों अनुवाद को।
लेकिन ये आप बोलते, बाइबल भी बोलती है कि ना तो इसमें से कोई घटा सकता है ना कम कर सकता है, ये तो परमेश्वर के सारे वचन है ना, तो उन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ फिर।
होगा होगा, क्योंकि अभी न्याय का समय तो नहीं आया ना, न्याय तो कौन करेगा, हाँ न्याय तो कौन करेगा, प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह करेंगे अपने दूसरे आगमन पे न्याय सबका। तो दो ट्रांसलेशन, सबसे पुराना और सबसे नया, KJV और NIV, हमें पूरा चानना दे देता है। और जो इसमें भी ना मिले, फिर हमें जाना पड़ता है ग्रीक भाषा और इब्रानी भाषा में, ठीक है, जिसमें ओरिजिनली लिखी गई थी। और उससे आगे जब इधर आया, इधर तो और नाश कर दिया, हिंदी पंजाबी दूसरे अनुवाद में ना, और मतलब ही बदल दिए। बताता हूँ एक आपको, बोलते हैं वो चोर था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पे गया, वो कहाँ गया,
परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग जाएगा।
तो प्रभु उसी दिन स्वर्ग गए,
नहीं
उसी दिन स्वर्ग गए, उसी दिन नहीं गए। और स्वर्ग नहीं लिखा है, पैराडाइज लिखा है, पैराडाइज स्वर्ग नहीं लिखा है। और दूसरी बात सुनिए सुनिए, समझ गए आप, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जल और आत्मा से
जो जन्म है वो स्वर्ग नहीं जा सकता,
वो ही जाएगा,
वो तो परमेश्वर के लिए लागू नहीं होता। परमेश्वर ने भी सरल उदाहरण करके दस जन्म, लेकिन वो तो पवित्र आत्मा से जन्म को,
जल और आत्मा से पैदा होना बहुत जरूरी है। अभी अभी आपको नहीं समझ आएगी ये, मैं आपको बाद में बात बताऊंगा जब आपको समझाऊंगा ये बात, ठीक है, छोड़िए ये बात। तो हम तो ये दो अनुवाद होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। ये अति पवित्र विश्वास की एक बाइबल में उदाहरण दिखाऊं, पढ़ो प्रेरितों के काम 17:11। हाँ, पौलुस क्या बोलता है, बड़े समझदार लोग हैं वो।
17:11
जी,
ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं है कि नहीं।
जो मैं बोल के जाऊं, जब मैं आपको जो शिक्षा दूं, आप पवित्र शास्त्र में ढूंढे ये बात ऐसी है भी या नहीं। पौलुस ऐसे लोगों को बोलता है, बड़े समझदार। लेकिन आज क्या होता है, अगर आप ऐसा करो ना तो आपको क्या बोला जाता है, अरे तुम्हें विश्वास नहीं हम पे, तुम कैसे दास हो,
मैंने तुम्हें बता दिया,
मैंने जो बता दिया वो सही है। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो गुस्सा किया जाता है,
या फिर वो आपको मूर्ख समझेंगे, बोलेंगे कि जैसा आप इंसान है मैंने बताया।
लेकिन पौलुस देख लो, आजकल जो हो रहा है बिल्कुल वचन के उल्ट होता है, समझ रहे, सब सब उल्ट हो रहा है। पौलुस बोलता है बड़े समझदार लोग हैं, बेरियन के लोग, सोते हुए आंखें जो बोल दिया मान लिया नहीं, पवित्र शास्त्र में ढूंढा ये बातें ऐसी है या नहीं है। ये होती है अति पवित्र विश्वास की अच्छी निशानी, क्योंकि हमें तो परमेश्वर को प्रसन्न करना है, आपको मुझे प्रसन्न नहीं करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तो अगला प्रश्न ये है, हमारा विश्वास कहता है कैसा है, क्या वो खाली विश्वास है या अति पवित्र विश्वास है, क्या इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और जो विश्वास, जो शिक्षा परमेश्वर के वचन में नहीं है वो है झूठ, वो है असच्चाई, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। और इसके बारे में भविष्यवाणी की पौलुस ने, इसके बारे में भविष्यवाणी की यीशु मसीह ने, आने वाले दिनों में लोग विश्वास से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। पहला तिमोथी 4:1 पढ़ लो, जी एक,
परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की स्थिति दिलाकर।
नहीं 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 नहीं,
पहला तिमोथी 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे।
विश्वास मतलब अति पवित्र विश्वास, भरमाने वाली और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पे मन लगा लेंगे, अति पवित्र विश्वास से। ये शुरू में ही हो गया था, तो आप तो आज तो 2000 साल हो गए हैं बहके हुए, तो बहके हुए चल रहा है। तो ये विश्वास तो परमेश्वर की ओर से नहीं था, ये तो शैतान के द्वारा फैला हुआ विश्वास था, और वो क्या था, झूठ, जो सत्य नहीं था। तो ये पढ़ लो यूहन्ना 8:44।
तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और वह झूठ का पिता है।
जो इससे झूठ जो इससे आएगा वो सत्य नहीं आएगा। इससे क्या आएगा? सत्य का पिता है परमेश्वर, झूठ का पिता है शैतान। सत्य है परमेश्वर का वचन, और जो परमेश्वर का वचन नहीं है वो है झूठ। तो वो परमेश्वर की आत्मा से हो सकता है? वो तो पवित्र आत्मा नहीं है, वो तो कोई और आत्मा है, और वो आत्मा है शैतान की आत्मा। तो इसलिए ये बड़ा प्रिय बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना विश्वास देखें, क्या वो विश्वास है या अति पवित्र विश्वास है। तो कुछ मैं बातें बोलूंगा अभी, हम क्या विश्वास करते हैं। जैसे मनुष्य का आत्मा, आपसे जब मैंने उस दिन पूछा था, आपने बोला कि आत्मा मर सकता है, लेकिन बाइबल क्या इसके बारे में शिक्षा देती है? क्या आत्मा अमर है? अमर मतलब मर नहीं सकती है, क्या मर सकती है? ये आत्मा क्या है? बाकी धर्म आत्मा के बारे में क्या बोलते हैं, और पवित्र बाइबल क्या बोलती है? आज अभी तक आपको नहीं पता है।
आत्मा शरीर दोनों मर सकते हैं, नाश हो सकते हैं,
लेकिन बाइबल बोल रही है, सही बात ना। तो हम अगर बोले कि हमारा अति पवित्र विश्वास है, तो हम इस स्थिति में नहीं बोल सकते कि हमारा है, क्योंकि हम तो विश्वास करते थे कि आत्मा मरता है, लेकिन बाइबल बोलती है, सॉरी आत्मा नहीं मरता है, बाइबल बोलती है आत्मा मरता है। तो
बाइबल भी तो पवित्र, पवित्र तो परमेश्वर ने ही लिखा है ना। परमेश्वर ने क्या बोला हुआ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। तो परमेश्वर अलग अलग, उसके अलग अलग जो दृष्टांत दिए उसमें अलग अलग उसके अर्थ
है। नहीं 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 नहीं, एक बात याद रखिए ब्रदर, ये आज एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। बाइबल के किसी भी वचन का एक भी वचन पकड़ लो, उसका अर्थ नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? अर्थ। मेरा बताने का तरीका या ब्रदर कुसिनो के बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। मैं क्या सुनता हूँ, मुझे इस तरीके से प्रकटीकरण हुआ, उसको इस तरीके से प्रकटीकरण हुआ, उसको प्रकटीकरण जैसा मर्जी हो, लेकिन मतलब तो नहीं बदलना चाहिए ना, अर्थ तो नहीं बदलना चाहिए ना। अगर परमेश्वर ने बोला आत्मा मरता है, तो एक जगह नहीं है, एक जगह होना चाहिए, है ना, हमें विश्वास करने के लिए। मैं आपको पूरा विश्वास करवाऊंगा, वचन से दिखा के करवाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ आज मत विश्वास करो, आप ये बात पे विश्वास मत करो जब तक आपके सामने नहीं आती। हाँ, जब तक आपको सिखाया नहीं जाता, जब तक आप बाइबल से सीखोगे नहीं, तब तक आप कैसे कर लोगे? नहीं, अभी नहीं, मैं तो सिर्फ वो तो आपको ट्रेलर दिया है। अच्छा। 3 लेसन की पढ़ाई है आत्मा के बारे में, 12, 13 और 14, फिर आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो आत्मा के बारे में क्या आप क्या जानते हो? क्या आत्मा मरती है, क्या आत्मा नहीं मरती है? नर्क क्या है? नर्क जैसा हम मानते हैं एक जलाए सताए परेशान करने वाली जगह है, क्या नर्क ऐसी चीज है? क्या परमेश्वर का सत्य वचन इस नर्क के बारे में क्या बोलता है? ये पढ़ना बाकी है अभी। ट्रिनिटी, 3 देवता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों एक, ये क्या है, इसके बारे में रहस्य है। मसीह विरोधी 666, ये कोई इंसान है, कौन है ये? आदम से लेके आज तक कितना समय हो गया है, किसी को पता है? जानते हैं नहीं। साइंस बोलती है मिलियन, बहुत सारे साल हो गए, कोई बोलता 10,000 साल हो गए, कोई बोलता लाखों ही साल हो गए, करोड़ों ही साल हो गए, किसी को कुछ नहीं पता। शैतान कैसा है? दिखने में बहुत बद्दा है, 2 सींग लगे हुए हैं। क्या चीज है शैतान? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, क्या प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को कोई जान पाएगा? कब आएगा प्रभु यीशु मसीह? कलीसिया क्या है? क्योंकि वचन में बोलता है एक ही शरीर, एक ही बपतिस्मा, लेकिन यहाँ पे हम देखे इतनी कलीसियाएं हैं, कौन सी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है, कैसे ढूंढे? क्योंकि कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। पेंटिकॉस्टल बोलता है मैं मसीह की कलीसिया हूँ, रोमन कैथोलिक बोलता है मैं मसीह की कलीसिया हूँ, कैसे ढूंढे? कैसे ढूंढे कौन सी है, किधर गए हम? ये सब चीजों पे विश्वास। परमेश्वर का राज्य, क्या इस धरती पे आएगा, जलंधर में आएगा, इधर आएगा, क्या परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरी होगी। तो इस बारे में, इन शिक्षाओं के बारे में आपका क्या विश्वास है? आप जो विश्वास करते हो क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है? अगर आप जो विश्वास करते हो और परमेश्वर का वचन कुछ और बोल रहा है तो आपका अति पवित्र विश्वास नहीं है। अगर आप जो विश्वास करते हो वो पवित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो आपका है अति पवित्र विश्वास, जो प्रभु ने सौंपा था किसको? प्रेरितों को, और प्रेरितों से निकला बाकी लोगों के लिए। ठीक है, तो आप बहुत श्योर होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्या हमारा विश्वास खाली विश्वास है या अति पवित्र विश्वास है। क्योंकि यहूदा 20 में हमने शुरुआती वचन में क्या पढ़ा था, अपने आप को अति पवित्र विश्वास में क्या करते जाना है, उन्नति उन्नति बढ़ते जाना है। और इसका मतलब क्या है पता, जो सत्य की असली शिक्षा है, शिक्षा पे शिक्षा, शिक्षा पे शिक्षा, शिक्षा पे शिक्षा, शिक्षा पे शिक्षा, ऐसे उसारी करते जानी है। और साथ साथ में क्या करना है, क्यों क्यों उसारी करते जानी है? क्योंकि यूहन्ना 8:32 में प्रभु का वायदा है क्या, तुम सत्य को जानोगे, स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता है सिर्फ सत्य में, सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन। तुम परमेश्वर का वचन जानोगे और परमेश्वर का वचन तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। किससे? सारे बहन से, सारी गलत शिक्षा से, सारे ये अंधविश्वास से। अंधविश्वास खाली दूसरे धर्मों में ही नहीं है, अंधविश्वास ईसाइयों में भी बहुत है, आपको पता चल जाएगा, साफ साफ अंतर पता चल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो क्या बोलता है, दूसरा तिमोथी 3 का 16 और 17। हाँ जी, 3 का 16-17,
संपूर्ण पवित्रता परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया।
संपूर्ण का मतलब समझते हो, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, हाँ हाँ,
और उपदेश और समझाने और सुधारने,
उपदेश के लिए, समझाने के लिए,
सुधारने
के लिए,
और धार्मिकता की शिक्षा के लिए,
हाँ
लाभदायक है,
हाँ, ताकि
ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए।
तो ये शिक्षा के लिए, शिक्षा का मतलब क्या है, सारी सच्चाई। परमेश्वर हर विषय पे आपको बाइबल से सच्चाई देगा, ये है शिक्षा। सुधारने के लिए का क्या मतलब है, जो गलत शिक्षा या गलत विश्वास आपके जीवन में है वो निकालने के लिए। फिर बोलता है तीसरा, ताड़ना के लिए। ताड़ना के लिए के क्या मतलब है कि गलत विश्वास हटाने के लिए, ठीक है। और धार्मिकता का वो करने के लिए मतलब कि आप संपूर्ण बन सको, एक अच्छे इंसान बन सको, परमेश्वर की नज़र में अच्छे इंसान बन सको, इंसान की नहीं परमेश्वर की। तो ये अति पवित्र विश्वास के बारे में समझने के बाद एक प्रश्न है आपके बारे में, क्योंकि इसी विश्वास का दूसरा हिस्सा भी है अगली क्लास, ठीक है, हाँ। तो लेकिन एक प्रश्न है, उसमें भी बहुत सी बातें करेंगे कि कैसे ये विश्वास भटक गया। दूसरी क्लास में हम देखेंगे कि कैसे अति पवित्र विश्वास में मिलावट आई और कैसे भटका ये। उसके लिए दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बोलता है एक औरत के पास 3 से राटा था, उसमें कोई आया और उसने खमीर मिला दिया, और तीनों के तीनों वो क्या हो गया, सारे का सारा
खमीर
हो गया। तो वो 3 से राटे का मतलब क्या है, आशा, विश्वास और प्रेम, कुरंथिया में बोलता है ना। लेकिन इन तीनों में उत्तम क्या है, प्रेम, ठीक है। तो तीनों में मिलावट कर दी, वो कैसे मैं बताऊंगा अगली क्लास में। लेकिन एक प्रश्न जो आज शुरू में, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बाइबल स्टडी या प्रार्थना, दोनों दोनों ये पढ़ लो, यहूदा 20 फिर से पढ़ लो। लेकिन ज्यादा पहले इम्पोर्टेंस हमें बाइबल स्टडी की, क्योंकि जब तक हमें सत्य नहीं पता हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। बोल क्या बोला हमने शुरू में पढ़ा था ना, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई, सच्चाई अगर मिसिंग है, अगर परमेश्वर का वचन ही हमें नहीं समझ या ज्ञान नहीं है तो कैसे हो सकती है संपूर्ण आराधना, है ना। पढ़िए भाई 20, यहूदा 20।
पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए,
देखो पहले क्या है, अति पवित्र विश्वास, उसके बाद है प्रार्थना, आगे
और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए।
हाँ, लेकिन आज ये बात उल्टी है।
पहले
बाइबल चाहे पढ़े ना पढ़ो, कई लोग बोलते हैं पास्टर जी हमारे पास हम काम ही इतना करते, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। पास्टर जी बोलते चल छोड़, नहीं है टाइम ना, कोई बात नहीं, तो प्रार्थना मत छोड़ना। मैं ब्रदर मैं सच बोलूंगा, मैं मुझे किसी के साथ कोई वो नहीं है, लेकिन जो आजकल बेचा जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना
जी।
तो हाँ बस हम खत्म कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर उल्टा क्यों हो जाता है हर बार? हमने उदारता के बारे में भी पढ़ा था, पहले परमेश्वर बचाएगा फिर सत्य का ज्ञान देगा, लेकिन वो भी ऑर्डर उल्टा है। पहले सत्य का ज्ञान प्राप्त करो फिर बचाए जाओगे। देखो हर चीज उल्टी हो रही है ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है, उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। आपको देखना उल्टा ही दिखाऊंगा, सब उल्टा ही दिखेगा। तो क्यों नहीं आज ईसाई बाइबल स्टडी को इम्पोर्टेंस देते, क्यों नहीं देते? समय, एक ही चीज पूछ लो, समय नहीं है, समय नहीं है, टाइम मिला तो कर लेंगे।
कई ये भी बोलते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, ज्ञान करता हूँ, लेकिन मुझे शैतान पढ़ने नहीं
देता। देखे वो जो वो क्या बोलते हैं, इल्जाम, इल्जाम शैतान पे लगा
देगा।
अगर तुम सच, हाँ अगर तुम सचमुच इंटरेस्टेड हो, अपने टीवी के 2 घंटे कट करो ना। शैतान को क्यों तुम ब्लेम कर रहे हो? वही एक, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ईसाइयों की, हर चीज शैतान पे थोप दो। हाँ शैतान तो हमारे पिता का विरोधी है, तो थोप दो इस पे। जो भी अगर हमारी गलती भी हुई ना, मान लो मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, अपने लड़के भी होते हैं, मैं उनको भी यही बोलता हूँ, हेलमेट तुमने लेके नहीं जाना है, पुलिस वालों ने रोक लिया। मान लो आप प्रार्थना पे ही आ रहे हो, हेलमेट नहीं लिया है, सामने वाले पुलिस ने रोक लिया, पुलिस वाले ने जा पैसे लिए या चलान काटा, हम पता है क्या बोलेंगे? ब्रदर जी आज शैतान ने बड़ी रुकावट डाली, हमें उधर रोक लिया और हमें इतने पैसे। अरे अकल तुम्हारी कहाँ घास चरने गई है? पहले रूल
बुद्धि,
और प्रभु ने खुद बोला है, बोलते अपनी प्रिंसिपैलिटीज मतलब सरकारों के अधीन रहो, कानून का पालन करो, पालन करो कानून का। एक अच्छा मसीही जो है ना उसको ये करना चाहिए, क्योंकि राज्य में कानून होगा और कानून की पालना करनी पड़ेगी। परमेश्वर के कानून होंगे और परमेश्वर के कानून की पालना करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ईसाई आज क्यों नहीं ये महत्ता देते बाइबल स्टडी को, और बाकी प्रश्नों के उत्तर कि ये अति पवित्र विश्वास कैसे भटका और क्या हुआ, तो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक तो परमेश्वर ही हम सबको आशीष दे और चलाए। आमीन।